अरपारेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मामणि।
आधुनिक एवं समकालीन युग। और अब आइए जानते हैं समकालीन इतिहास से क्या अभिप्राय है। समकालीन इतिहास के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इसका शाब्दिक अर्थ है इतिहास लेखन के समय में घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा, जिन्हें इतिहासकार ने स्वयं भोगा है। अनेक इतिहास लेखकों का मत है कि प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक काल के इतिहास की भांति समसामयिक या समकालीन इतिहास की एक विशेष अवधि और विशेषताएं हैं। कुछ इतिहासकार 1945 ईस्वी से लेकर अब तक की अवधि को समकालीन इतिहास मानते हैं। एक इतिहासकार ने 1917 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक की अवधि को समकालीन इतिहास का प्रथम चरण कहा है। वह लिखता है कि रूस में 1917 ईस्वी की महान समाजवादी अक्टूबर क्रांति से समकालीन इतिहास का प्रारंभ होता है। मानव जीवन की भाग्य रेखा को बदलने के लिए शोषक वर्ग के प्रभुत्व को समाप्त कर तथा सामाजिक न्याय की स्थापना कर इस क्रांति ने सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र किया। कुछ पश्चिमी इतिहासकार 1914 ईस्वी से 1920 ईस्वी के कालखंड को भी समकालीन इतिहास का अंग मानते हैं। एक फ्रांसीसी लेखक ने 1914 ईस्वी से 1945 ईस्वी को समकालीन इतिहास मानकर इस अवधि की घटनाओं का उल्लेख किया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार 20वीं शताब्दी का इतिहास ही समकालीन इतिहास है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मानव प्रगति का वह काल जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक अर्थात 1890 से 1900 ईस्वी से शुरू होकर आज तक चल रहा है, साधारणतया समकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस काल में साम्राज्यवाद का धीरे धीरे अंत हुआ और अनेक एशियाई, अफ्रीकी एवं दक्षिणी अमेरिकी देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। राष्ट्रीयता के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के निकट आने लगे तथा उनमें परस्पर सहयोग एवं सहायता की भावना का विकास हुआ। वयस्क मताधिकार के आधार पर 18 वर्ष की आयु से बड़े सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला तथा गरीबी, पिछड़ापन, बढ़ती हुई जनसंख्या, शस्त्रों की होड़, प्रदूषण आदि समस्याओं के प्रति सब लोग समान रूप से चिंतित होने लगे। इस प्रकार हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 20वीं सदी का इतिहास ही वास्तविक अर्थों में समकालीन इतिहास है। इतिहासकार ज्योफ्रे बोरावल का कथन है कि समकालीन इतिहास का एक प्रमुख लक्षण इसका विश्व इतिहास का स्वरूप है। उसके अनुसार समकालीन इतिहास का आरंभ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जब से विश्व की समस्याएं स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। यह कहना उचित ही होगा कि औद्योगिक क्रांति के शीर्ष पर समकालीन युग की स्थापना हुई। और अब समसामयिक समकालीन इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। 20वीं शताब्दी घटनाओं का काल है। उसके आरंभ से ही जितनी तेजी से इस शताब्दी में घटनाएं घटित हुई, उतनी तो शायद उसके पहले की संपूर्ण शताब्दियों में घटनाएं नहीं हुई। 20वीं सदी की इन भयानक घटनाओं के बावजूद भी बहुत सी अच्छी घटनाएं इस सदी में हुई, अतः समकालीन विश्व इतिहास की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, विश्व का एकीकरण। विज्ञान एवं तकनीकी की उन्नति से यातायात एवं संचार साधनों का अधिक विकास हो गया तथा लंबी दूरी को चंद क्षणों में तय किया जा सकता है। स्वाभाविक तौर पर ऐसा होने से विभिन्न देशों से संपर्क भी घनिष्ठ हुए हैं तथा मानव समाज की समस्याओं के स्वरूप भी क्षेत्रीय व राष्ट्रीय न रहकर अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। युद्ध व शांति का प्रश्न, पर्यावरण की समस्या, प्राकृतिक प्रकोप, भूख, गरीबी तथा आर्थिक विकास की समस्या, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ही संभव हो सकता है। समूचा संसार इससे पूर्व कभी भी एकीकृत नहीं हुआ था जैसा आज है। दूसरा, परिवर्तन का युग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन तथा मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन समकालीन इतिहास की विशेषता है। अनेक दृष्टियों से समकालीन दुनिया भयानक रही है। इतने बड़े स्तर पर किसी और सदी ने विध्वंस नहीं देखा है और ऐसी भयानक यातना भी नहीं देखी। 20वीं सदी के आरंभ के दशक तक संपूर्ण विश्व पूंजीवाद के एक छत्र प्रभुत्व में था। दूसरे दशक में समाजवाद की प्रगति तथा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का दुर्ग ढहना प्रारंभ हुआ। आधुनिक युग के आरंभ से ही संपूर्ण संसार में यूरोप का प्रभुत्व विद्यमान था। इस सदी ने उस दुनिया का उत्थान देखा जिसे आमतौर पर तीसरी दुनिया कहा जाता है। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। विश्व की गतिविधियों में तीसरी दुनिया के देशों का उदय हुआ। तीसरी दुनिया के देशों का यह उत्थान उन साम्राज्यवादी बेड़ियों को काट कर हो सका जिसमें यूरोप की शक्तियों ने उन्हें जकड़ रखा था। 20वीं सदी सफल राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों की सदी है। इस युग में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ को विश्व शक्ति अथवा महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देखा गया है। जापान का पश्चिमी औद्योगिक शक्ति के मुकाबले शक्तिशाली औद्योगिक देश के रूप में विकास हुआ। इस प्रकार इस शताब्दी में विश्व राजनीति के रूप में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। तीसरा, राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन। इस युग में सारी दुनिया में राज्य के स्वरूप और उसके कार्यों में परिवर्तन हुआ है और नवीन राज्यों का निर्माण हुआ है। पिछली शताब्दियों के किसी भी राज्य की तुलना में आज राज्य को कई तरह की भूमिकाएं करनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास के निर्माण में आम जनता की बहुत अधिक सक्रिय भागीदारी हो गई है। अब विश्व के लगभग सभी भागों में वयस्क मताधिकार राजनीतिक जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। चौथा, अर्थव्यवस्था और समाज में विश्व स्तर पर परिवर्तन। अर्थव्यवस्था और समाज में विश्व स्तर पर काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए हैं। इस शताब्दी में उद्योगवाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उद्योगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सीधे प्रयोग के कारण आर्थिक जीवन में परिवर्तन की गति तीव्र हो गई है। परंतु वे देश और पृथ्वी के वे भूभाग काफ़ी पीछे छूट गए हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं मिल पाया है। आर्थिक रूप से विकसित तथा विकासशील देशों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। विश्व के लगभग सभी समाजों को जबरदस्त परिवर्तनों के मार्ग से चलना पड़ा है। आज मनुष्य की प्रत्याशाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। मानव जाति का अधिसंख्य हिस्सा बहुत कुछ पाना चाहता है। पांचवा, विचारों का लौकिकीकरण। 20वीं शताब्दी का इतिहास राजनीतिक और सामाजिक जीवन का साहित्य और कलाओं तथा इनके साथ दर्शन और विचारों का लौकिकीकरण का रहा है। यद्यपि विश्व के कुछ प्रदेश अभी भी सांप्रदायिक व धार्मिक टकरावों और लड़ाई झगड़े से मुक्त नहीं हो पाए हैं, फिर भी समाज पर धर्म की पकड़ ढीली हुई है और मनुष्य की इह लौकिक जीवन की इच्छाओं को पूरी करने की मांग बढ़ती गई है। यह संसार भौतिकवाद की ओर बहुत तेजी से अग्रसर हुआ है। अधिकांश साहित्यकारों और कलाकारों ने साहित्य और कला की प्रचलित और मान्य विद्याओं और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने कला को नए रूपों में गढ़ा और उन्हें नया आयाम दिया, नई तकनीकों के साथ प्रयोग किया और नए नए अनुभवों को अभिव्यक्त किया। साहित्य में नई अभिव्यक्तियों की पहचान बढ़ी। जिन देशों में राष्ट्रीय जागरण का दौर चला और जहां भी परंपराओं का सजग सचेत पुनरुत्थान हुआ, वहां कला के जिन रूपों का या साहित्य का जन्म हुआ, वह कला और साहित्य स्पष्टतः नया था या 20वीं शताब्दी का था। वह अपने पूर्ववर्ती परंपराओं का विस्तार भर नहीं था और उन रूपों की नकल तो बिल्कुल नहीं था।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।